તારીખ 30/12/1991 પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા સોનગઢમાં થયેલ તત્વ ચર્ચા સળંગ નંબર 43
એટલે એમ કે જે ભવ્ય જીવ હોય છે, જે જીવ ભવ્ય હોય છે એને ભવ્યત્વ પ્રગટ થાય છે, એની સમીપતા આવી ગઈ મોક્ષ માર્ગમાં પ્રવેશ કરવાનો, સમીપતા આવી ગઈ. હા, ભવ્ય જે જીવ છે કે જે મુક્ત થવાને યોગ્ય છે એને જ ભવ્ય કહીએ છીએ આપણે. તો એને મુક્તિધનો જે માર્ગ છે એ મુક્તિનો માર્ગ એને હવે સમીપ છે એમ કહે છે. આસન ભવ્ય નથી કહેતા, સંસ્કૃતમાં શબ્દ છે આસન ભવ્ય. આસન એટલે સમીપ, નજીક. હા, મુમુક્ષુની ભૂમિકા મેં મુક્તિ કે મુક્તિના ભણકાર, મુક્તિ કે ભણકાર આ જાતે ચીજ બહુત જલદ પાવરફુલ હૈ, જલદ જૈસે કસ્તુરી ઉઠી હૈ તો ઉસકી જો સુગંધ હૈ બહુત તેજ હૈ, તો વો હાથ મેં રખો ને તો ભી દૂસરો કો સબ સુગંધ આ જાયેગી, ઓર છોડ દો તો ઘંટો તક હાથ મેં માસ બેઠ જાયેગી, કારણ બહુત જલદ હૈ, પાવરફુલ બહુત હૈ. એસે આત્મા પાવરફુલ ઇતના હૈ કે અગર ઉનકે સ્વભાવ કે અનુકૂળ અગર કોઈ ચીજ પરિણામ મેં ચાલુ હો જાતી હૈ તો બહુત રિસ્પોન્સ આતા હૈ અંદર સે. અવ્યક્ત રૂપ છે. હિન્દી મેં ભણકાર કો ક્યા બોલતે હૈ? બાત યે ચલી કે મુમુક્ષુ કી ભૂમિકા મેં જિસકો મુક્ત હોને કી ભાવના અંતર સે હોતી હૈ, મુજે તો મુક્ત હોના હી હૈ, તો ઉસકો વો ઝંકાર આ જાતી હૈ મુક્તિ. હા, એ મુક્તિ ના કયો કેવળ જ્ઞાન એક ઈ વાત. પરમાગમો મેં સબ બાતો કા મૂળ હૈ, ફિર જ્ઞાનીઓ ને અપની અપની મૌલિક પદ્ધતિ સે ઇસી બાત કો સ્પષ્ટ કર દીયા. ઘણા દિવસ થયા તો મેં કીધું કઈક ભાવનગર બહાર નીકળી ગયા લાગે છે.
માણેક સ્તંભ રોપીને ગયા એટલે લગ્ન થાય જ,
મુક્તિ
રસ્તામાં યાદ આવ્યું
એટલે મુક્તિ થવાની છે એમને. ચર્ચા ચાલે છે તૈયારી ઇધર ચાલુ હો ચુકી
હૈ
ભાવિ સમવસરણ ગુરુદેવ કે સમવસરણ મેં જાને વાલે જીવ યહાં આયે હૈ
અધિકાંશ
લોક દોનો ભી વૈમાનિક દેવ મેં હૈ, ગુરુદેવ ભી ઓર બાબુજી ભી હૈ, ઓર યહાં ભી કાફી ઉન્હોને વિરહ કો વેદના આઈ હૈ. तो उस वक्त कर्म बंधन तो पुण्य के हो गए, पुण्य का फल तो वहां देवलोक में अभी चालू हो गया. अभी आयु करीब करीब की होती है तो फिर और भी जब गुरुदेव मनुष्य होंगे तो उस वक्त अधिक प्रचार होगा, जहां भी जाएंगे अधिक प्रचार होगा, उसमें वो सब शामिल होंगे. गुरुदेव की मंडली में अभी भी है देवलोक में और यहाँ भी होगा मनुष्य शरीर में. फिर उनका जो चरम शरीर है वो चले जाएंगे. મારા ઉપર નો પત્ર છે. જ્ઞાન કણિકા પત્ર દ્વારા મંગવાઈ સો આગે તો આપ કે પાસ હૈ. સ્વાવલંબન સે સહજ હી વિભાવ સે પૃથક હોકર પ્રગટતી રહેતી હૈ. અનેકાનેક જીવો કી યોગ્યતા અક્ષય સુખ કે ઉદય કી હૈ. એ સંબોધન કિયા કે અનેકાનેક જીવો કી યોગ્યતા અક્ષય સુખ કે ઉદય કી હૈ, અથ અથ તીર્થંકર સે ભી અધિક સત્પુરુષ કા યોગ પ્રાપ્ત હુઆ. તીર્થંકર જૈસા નહીં, યહાં ભી પત્ર મેં ભી આયા હૈ કે તીર્થંકર સે ભી અધિક સત્પુરુષ કા યોગ પ્રાપ્ત હુઆ. ચતુર્થ સ્થાન મેં કૈસે આ સકતા હૈ, આ સકતા હૈ પ્રાપ્ત નહી હોય હો ગયા. જિનકી નિત્ય પ્રેરણા ઉધર સે વિમુખ કરા કર સ્વયં કે નિત્ય ભંડાર કી ઓર લક્ષ્ય કરાતે રહેતે. યહાં સે હી પૂજ્ય ગુરુદેવ કે ન્યાય અનુભવ સિદ્ધ હોકર ભ્રષ્ટા પ્રાપ્ત કરાતે હૈ. કેટલી ભક્તિ અનંત તીર્થંકર સે અધિક, તીર્થંકર સે ભી અધિક પ્રત્યક્ષ કી ભક્તિ કિતની, ઉપકારી કી ભક્તિ કિતની. પ્રત્યક્ષ સદગુરુ સમ નહીં, પરોક્ષ જીન ઉપકાર. એ સિદ્ધાંત કૃપાળુ દેવ નો એ સિદ્ધાંત આયા છે. એમને યોગ થયા વિના એટલી બધી લાઈન પકડી, એમને યોગ થઈને થોડો યોગ વધારે રહ્યો તો એટલી લાઈન પકડી. બંને ગ્રહસ્થ બંને વેપારી પુરુષાર્થ બી એવા શોષણ ને કર શોષણ શ્રીમદજી નો બહુ આમ તો શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય છૂટી ગયો હતો ધ્યાનમાં ચડી ગયો એકદમ એકાગ્રતા અને અભ્યાસમાં બહુ ચડવા દીધો દ્રષ્ટિ કે નિર્ણય મેં પૂર્ણ શુદ્ધિ ભરી છે એટલો ટુકડો છે એમ કેવું છે કે દ્રષ્ટિ કા વિષય કા નિર્ણય જ્ઞાન મેં હોતા હૈ નિર્ણય જ્ઞાન કી પર્યાય તો દ્રષ્ટિ કા વિષય કા જિસકો નિર્ણય હો ગયા તો ઉસમેં ઉસકે ગર્ભ મેં મુક્તિ આ ગઈ સમ્યક દર્શન કે ગર્ભ મેં તો આ ગઈ લેકિન નિર્ણય કે ગર્ભ મેં આ ગઈ ભાવભાષણ મેં આ ગઈ એ કહેને કા બહુ પુરુષાર્થ નો ઉછાળો તીવ્ર પુરુષાર્થ ચાલુ હો જાતા હૈ પ્રયોગ કા ઇસકે પહેલે ભાવભાષણ કે લીએ પ્રયોગ કા જો પુરુષાર્થ હૈ તો ઇસકે આગે કુછ નહીં અભી તો હમારે મુમુક્ષુ લોગ યે ફરિયાદ કરતે કે પ્રયોગ નહીં ચલતા ક્યોંકિ પુરુષાર્થ નહીં હૈ ઇસ પ્રકાર કા પ્રયોગ નહીં ચલતા ક્યોંકિ ઉસ પ્રકાર કા પુરુષાર્થ નહીં ચલતા યહાં તો નિર્ણય હોતે એક નયા સ્ટેજ મેં નહીં ટ્રેક મેં પરિણામ કી ગતિ ચાલુ હો જાતી હૈ બહુ સ્પીડ આતી બહુ સ્પીડ આતી બહુ ઝડપથી ચાલે અને બદલીને સ્વસન્મુખતાનો પુરુષાર્થ ચાલુ થઈ જાય છે એટલે અનુભવમાં વાર નથી લાગતી અનુભવમાં દેર નહીં સહેજ જ ગમે કૈસા ભી ઉદય હો પુરુષાર્થ ચલેગા સંસાર મેં ભી પેર રખના હૈ ઓર ઉધર ભી જાના હૈ સંસાર છોડ કરકે જાના હૈ તો બાત કૈસે સંભવ હૈ બતા જતી હૈ પૂરા સંસાર આર્થિક ધનાર્થિક હો કે સંસાર આર્થિક હો એક હી બાત હૈ લેકિન સંસાર આર્થિક મેં લોગ નહીં સમજતે ધનાર્થિક મેં સમજ જાતે ક્યોંકિ ધન કા પ્રયોજન સબો કો હૈ યે બાત સબકો અનુભવ ગોચર હૈ અચ્છી તરહ ઇસલિયે યથાર્થ નહીં હૈ તો ધનાર્થી પણ યથાર્થ લાઈન મેં આ ગયા તો ધનાર્થી પણ આ ગયા તો ફિર ઇસકી જો ભી બાહ્ય ક્રિયા હૈ ઉસકો અપને ધ્યેય કે અનુકૂલ કેન્દ્ર સ્થાન મેં રખ કર ધ્યેય કો કેન્દ્ર સ્થાન મેં રખ કે સભી ક્રિયા ચલે ગઈ લિંગી કો ભી સંસારાર્થી પણ હૈ ઇસલિયે ધનાર્થી પણ હૈ ક્યું કે વો જાયેગા કહાં કહાં જાયેગા સ્વર્ગ મેં જાયેગા તમારે તો સંપત્તિ બહુત હૈ ધન મેને સંપત્તિ ઉતના લપેટ હો જાયેગા અસંગ તત્વ કા તો ભાન નહીં ઉતના લપેટ હો જાયેગા સંપત્તિ મેં એક ઇન્દ્રિય મેં ફિર જાયેગા
फल
मैंने क्या है कि फिर वही स्थिति इसकी गर्भ में पड़ी है वो चीज। जिसको पुण्य की भावना है, मोक्ष की भावना नहीं है उसको पुण्य की भावना है। पुण्य की भावना को या पुण्य के फलस्वरूप धन की भावना को, एक ही बात हो गया। पुण्य का फल में क्या मिलता है? संपत्ति मिलती है, एक ही बात हो गई। कर्म चेतना ने कर्म फल चेतना दो पक्ष है। एक भगवान का मोक्षार्थियों का, भगवान का मैंने मुक्तात्माओं का है जो मोक्षार्थी का है, और दूसरा विरोध पक्ष है संसारार्थियों का। तो आपको अपने अपने को किस पक्ष में रहना है? निश्चय तो अपने को करने का है कि हमको किस पक्ष में रहना है। दान भी देता है और त्याग करता है, तो दीक्षा लेता है, तो धन का त्याग करता है, तो उसको पता नहीं लगता है मैं धनार्थी कैसे हूँ। लेकिन जिसको पुण्य की वांछा है, मोक्ष की वांछा नहीं है, वो तो सब धनार्थी और संसारार्थी ही है। नियम से मोक्षार्थी आत्मा न जाने सके, बीजो न जाने सके। आत्मार्थी शब्द नहीं वापर, मोक्षार्थी शब्द पूर्णता लक्ष्य वाली बात ले। नाम थी खाली जुदा पड़े छे, भाव थी जुदा नहीं पड़ता। परम पारिणामिक भाव को या ज्ञानायिक भाव को एक ही बात है। नाम अलग अलग है, भाव तो वस्तु तो एक ही है। इसका नाम दो नाम है, उसका नाम तो बहुत है। इसका ज्ञान ने मुख्यता से पारिणामिक भाव को ज्ञायिक भाव बोला। ज्ञान की मुख्यता से पारिणामिक भाव को ही ज्ञायिक भाव बोलने में आता है। मतलब उसका नाम अलग बोला है, वही चीज का नाम है। और फिर तो उपासना एक से हो गई, अलग अलग उपासना का तो सवाल नहीं है। स्वसन्मुख होना वही बात है। एक अर्थ, बिल्कुल एक अर्थ। जैसे ध्रुव कहते हैं तो वही पारिणामिक भाव है, अपरिणामी कहते हैं वही अपरिणामिक भाव है। वही पारिणामिक भाव, न्यायिक हो तो वही पारिणामिक भाव है। परम तत्व कहो, परमात्म तत्व कहो, निज स्वरूप कहो, मूल स्वरूप कहो, असल स्वरूप कहो, सब एक ही बात है। बस उसके सन्मुख हो करके तन्मय होना, ये इसकी उपासना।
महाविद्यालय
वास्तव में तो आत्मा में से आया है क्या? आया है तो आत्मा में से आया है। फिर ध्रुव कहाँ से आया, आय परिणाम शब्द कहाँ से आया, तो वो भी आत्मा में से आया। लक्षण तो ज्ञान लक्षण एक ही है। आत्मा का स्पेसिफिक लक्षण कोई है आत्मस्वरूप का, तो वो ज्ञान लक्षण है। दूसरा लक्षण अतिव्याप्ति दोष वाला या अव्याप्ति दोष वाला है। निर्दोष कोई लक्षण हो तो वो ज्ञान लक्षण है, वो निर्दोष लक्षण है। और पहचानने के लिए लक्षण का कोई क्या काम है कि एक ही काम है पहचान करने का, तो उसमें ज्ञान लक्षण सिवा दूसरा किसी भी चिन्ह से आत्मा को पहचाना नहीं जा सकता। ये सारा समय सार का टोटल आखिरी के श्लोक में जयचंद जी ने लगाया भावार्थ में।
दोनों का लक्षण जुदा जुदा
नहीं, वस्तु एक है तो लक्षण भी एक ही होगा ना, अर्थ अलग अलग है। तो वो तो जिस शब्द से बात किया उसी धर्म का मुख्यता करके सारी वस्तु को बोला। एक आदमी का दो तीन नाम होए कि भाई इनके ससुराल में ऐसा नाम बोलते हैं और इसके बचपन के दोस्त यही नाम से पुकारते हैं और इनके बाजार में उसको ये नाम से बोलने में आता है, तो आदमी थोड़ा बदलता है क्या? उसमें भी ज्ञान लक्षण की बात है। चेतना में तो दर्शन और ज्ञान दो आता है, लेकिन दर्शन लक्षण से तो पहचान होती नहीं, वो तो ग्रहण ही नहीं होता छद्मस्तक। दर्शन उपयोग तो ग्रहण होता ही नहीं, पकड़ने में नहीं आता। ज्ञान में भी अवग्रह या अवाय में पकड़ने में आता है, मति में तीसरा स्टेज में। इसलिए ज्ञानी लक्षण वो चर्चा किया है जयचंद जी ने। जयचंद जी ने इस बात की चर्चा किया कि चेतना लक्षण है ना, तो कि चेतना में दो बात है, दर्शन ज्ञानी काम में आता है, दर्शन काम में नहीं आता है पहचान करने में। बस 46 कलश। चेतनता यद्यपि आत्मा का लक्षण है तो भी वह शक्ति मात्र है, वो सामान्य चैतन्य गुण लिया अदृष्ट है। उसकी व्यक्ति दर्शन और ज्ञान है, उसमें दर्शन और ज्ञान में भी ज्ञान साकार है, प्रकट है और अनुभव गोचर है। दर्शन निराकार है और अनुभव गोचर नहीं होता है। प्रकट तो वो भी है, उसकी व्यक्ति तो दोनों है, व्यक्ति मैंने प्रकट, लेकिन ज्ञान में ज्ञान साकार है, प्रकट है और अनुभव गोचर है, इसलिए उसके द्वारा ही आत्मा की पहचान कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ज्ञान को ही प्रधान करके आत्मा का तत्व कहा है। समय सार में दर्शन मात्र ऐसा आत्मा नहीं कहा और ज्ञान मात्र आत्मा क्यों कहा? श्लोक है कि इति इदम् आत्मनः तत्त्वं ज्ञान मात्रम व्यवस्थितम्। ज्ञान मात्रम अवस्थितम्, ज्ञान मात्रपणे क्यों अवस्थित किया? दर्शन मात्रपणे क्यों नहीं, चेतना मात्रपणे क्यों नहीं? तो पहचान कराने का हेतु है, क्योंकि अज्ञानी को ज्ञानी बनाना है समय सार में, तो यही मुद्दा है। ज्ञान लक्षण से आत्मा की पहचान होवे, यही अभिप्राय से ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र ऐसा आत्मा को पुकारा है। साकार में जिसका स्वरूप फिक्स हो सके, आकृति जैसे होती है तो आकृति में फिक्स होता है ना भाई, इसका आकृति ऐसी है, तो ये क्षेत्र की आकृति हुई, ये भाव की आकृति, इसका स्वरूप ज्ञान में बराबर चौकस हो सके, निश्चित हो सके, उसको साकार कहते हैं। ज्ञान साकार है,
ज्ञान मात्र के मात्र के बीजू का
नहीं, मात्र ज्ञान, न न न न ज्ञान मात्र, न मात्र ज्ञान सामान्य चौकस स्वरूप जन नहीं, नहीं आकृति में क्षेत्र नहीं, आकृति नहीं, चौकस स्वरूप जन भाव स्पष्ट आपने कीधु कि आ बात उपसे छे, उपसे छे એટલે શું કહે છે, જ્ઞાન માં ચોક્કસ થાય છે, કે આ બધી વાતો માંથી આ એક વાત ઉપસે છે, આ તારણ કેવી રીતે કાઢીએ છીએ, એમ આત્મા સંબંધે બહુ સી બાતે નીકળી, તો ફિર ભી ક્યા ઇસમે સે નીકળતા હે કે આત્મા જ્ઞાન માત્ર હે, એસા ઓર સબસે જ્યાદા અનુભવ ગોચર હે, વેદન ગોચર હે, દૂસરા કોઈ વેદન ગોચર નહીં, એસી બાત, અનુભવ કહો વેદન કહો એક હી વાત હૈ, ગોચર મેને અનુભવ મે અનુભવ સે પતા ચલતા હૈ, ગોચર મેને
દ્રશ્યમાન,
હા ગોચર મેને દ્રશ્યમાન હોના, તો અનુભવ સે જો દિખને મે આતા હૈ, વેદન સે જો દિખને મે આતા હૈ, એસા तो अलग अलग धर्म है, एक जानना एक अनुवेदन करना अलग अलग धर्म है, आत्मज्ञान जान रूप ज्ञान नहीं है, अनुभव रूप ज्ञान है, क्या आत्मज्ञान है वो सिर्फ जान रूप ज्ञान नहीं है लेकिन अनुभव रूप ज्ञान है, इसलिए आत्मा के विषय में हम लोग ज्ञानी से या शास्त्र से बहुत सी बातें जानते हुए भी हमको आत्मज्ञान नहीं होता, क्योंकि अनुभव ज्ञान नहीं है, इसलिए अनुभव आत्मा के अनुभव ज्ञान को ही ज्ञान कहा है, उसको तो ज्ञान ही नहीं कहा, जानकारी वाला ज्ञान को तो ज्ञान ही नहीं कहा, ज्ञान की पर्याय है, फिर भी वो ज्ञान विशेष में जाता है, ये ज्ञान सामान्य में वेदन है, जितना भी भेद वाला ज्ञान है वो सब ज्ञान विशेष, फिर आत्मा का भेद प्रभेद जाने वो भी ज्ञान विशेष, और अभेद आत्मा को जाने वो ज्ञान सामान्य, क्या उसमें तो पर्याय है नहीं, फिर सामान्य विशेष का क्या विचार करना है,
नजर में तो वही
ज्ञान के पर्याय उस वहां तक उनको अपना स्वरूप जानती है, वेदन पूर्वक स्वसंवेदन पूर्वक, वेदन पर्याय में पर्याय कहा था अवलंबन त्रिकाली का रहता है,
उसको लक्ष्य में लेने से अपने आप वेदन आता है,
हाँ
चैतन्य गति,
हाँ वेदन से, वेदन से वो लक्ष्यगत होता है, पर लक्ष्यगत होने से वेदन और उभर कर बढ़ जाता है,
हाँ।
दोनों एक दूसरे के संलग्न है, ऐसी बात, बिना वेदन अंश लक्ष्य नहीं होता, पर लक्ष्य में आने से ही वेदन स्वसंवेदन निर्विकल्प आ सकता है, इसके पहले आ ही नहीं सकता,
शुरुआत भी वेदन से होती है और ऊपर के सामने आना वो भी वेदन से,
पकड़ने में नहीं आता, ज्ञान वेदन पकड़ने में नहीं आता है, क्योंकि राग का वेदन और शरीर आदि का वेदन साता असाता का या ठंडी गर्मी के वेदन, ऐसे पर का वेदन में अध्यासित रहा हुआ वो ज्ञान वेदन है, भ्रमित दशा में है, वेदन का विषय में भ्रमणाएं हैं। इसलिए मात्र ज्ञान शब्द लेने का, मात्र शब्द का यही प्रयोग है, ये सब निकले तभी वेदन में आ सकता है।
का वेदन नहीं होता है।
ज्ञान में सिवा ज्ञान वेदन होने के कोई अवकाश नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, कोई संभावना नहीं, कोई शक्यता नहीं, ये वस्तु स्थिति है। इसलिए तो कल परसों आया ना कि दूसरे गुण को जड़ कहा, क्या बोला गुरुदेव है, वही एक गुण चैतन्य है और सब गुण जड़ है। हाँ, क्या ऐसा तो चेतनता सारे सर्वगुण में व्यापक है, जीव का अस्तित्व और जड़ जड़ का अस्तित्व एक सा नहीं है, फिर भी वो भी एक मर्यादित बात है, वो भी एक मर्यादित बात है, अलग अलग मर्यादा है। नियम सार का दृष्टांत दिया कि स्वपर प्रकाशक में आनंद को पर किया है, निर्विकल्प दशा में पर को जानता तो नहीं है, तो स्वपर प्रकाशक मना उठ जाता है। शिष्य ने प्रश्न किया कि निर्विकल्प दशा में स्वपर प्रकाशक है ना, आप तो स्वभाव कहते हो, स्वभाव का तो अभाव होता नहीं, निर्विकल दशा में पर का विषय जानना होता ही नहीं, पर प्रकाशक बना रहता ही नहीं, तो रहता है कि कैसे कि ज्ञान ज्ञान को जानता है और आनंद को भी जानता है।
पर्याय छे ने,
हाँ आनंद पर है,
पर छे ने पर्याय छे,
हाँ पर्याय भी है और पर गुण की है, आनंद ज्ञान गुण की नहीं, ज्ञान की पर्याय ज्ञान में है और आनंद के
पर
गुण को भी जान सकता है और पर्याय को भी जान सकता है, दोनों पर है। हमने तो सुना था आगे भी, लेकिन कल तो शास्त्र प्रमोगम शर्मा में खींचा 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 है, एकत्र बोल पाए नहीं, आज नीचे नो ग्रंथ सौ
આઠ
પેજ માં એક ફરમાનના પોતાના હસ્તાક્ષરના બ્લોકમાં બનાવ્યો હતો, આઠ પેઢ। આત્માનું જ્ઞાન સ્વપર પ્રકાશક હોવાથી તેના અનુભવના કાળમાં પણ તે જ્ઞાન સ્વરૂપ જ્ઞાનને પણ પ્રકાશે છે અને આનંદને પણ પ્રકાશે છે, તેથી તેને નિશ્ચયથી સ્વપર પ્રકાશક કહેવાય છે। और आनंद रूप ज्ञान है, ज्ञान भी आनंद रूप है और उसमें आनंद का प्रतिबिंब भी पूरा का पूरा आया,
तो आनंदमय हो गया
तो ज्ञान में रहे आनंद जे रहेलो छे एनी वात तो जे जाने छे पर प्रकाशक तरीके तो आनंद पर आनंद ने
बीजो गुण छे बीजो गुण छे
आनंद में जानवा जेवु शु छे जे आनंद तो वेदवा मात्र नी वस्तु
छे एवं छे के सभी गुण ज्ञेय भी है सभी द्रव्य भी ज्ञेय है सभी गुण के सभी द्रव्य के गुण भी ज्ञेय है सभी गुण के पर्याय भी ज्ञेय है ज्ञेयत्व तो सभी में है ज्ञान को भी ज्ञेयत्व है ना ज्ञान में ज्ञानत्व भी है और ज्ञेयत्व भी है स्वज्ञेय है तो जनाने योग्य इसको ज्ञेय कहते हैं
इसमें
तो थोड़ा चक्कर में चढ़ जाओगे छोड़ो अभी इसका काम नहीं है आपको ज्ञान शक्ति साकार उपयोगमयी और आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञ शक्ति तो दो शक्ति है ना ज्ञान नाम की दो शक्ति हो गई कि नहीं हो गई सामान्य किसी भी शास्त्र पढ़ने वाले को पूछो कि आत्मा में ज्ञान शक्ति कितनी प्रकार की ज्ञान शक्ति है तो ज्ञान की शक्ति है कि प्रकार की ज्ञान गुण प्रसिद्ध है और ज्ञान गुण के पर्याय में सर्वज्ञता आती है उसको सर्वज्ञता हम कहते हैं लेकिन है ज्ञान के पर्याय ऐसे लेते हैं आचार्य महाराज ने शक्ति दो लिया है शक्ति का विषय बहुत सूक्ष्म है त्रिकाल है पर्याय नहीं है दो हो गई ना मैंने तो स्पष्ट पूछा था स्वामी जी क्या दो शक्ति है तो कहाँ दो है क्या उनका कैसे फिर उत्तर में दिया कर दिया है स्पष्टीकरण सब होता भी नहीं नाम में इतना स्पष्ट आना चाहिए ना नहीं आता है कभी लेकिन है सो है ऐसा पता चल जाता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं आता विशद स्वसंवेदन मई प्रकाश शक्ति देखो ये शक्ति तीसरी है स्वसंवेदन वाली तीसरी है अब क्या करोगे आनंद तो कहाँ पड़ा रिया आनंद तो कोई और जगह पड़ा है लेकिन स्वसंवेदन में ही प्रकाश शक्ति तीसरी है ऐसी बात है तो बहुत सूक्ष्म विषय है जैसे ज्ञान को अस्तित्व का रूप मिलता है आनंद को अस्तित्व का मिलता है आनंद गुण को मिलता है लेकिन आनंद को श्रद्धा का रूप कैसे मिलता है और अस्तित्व को आनंद का रूप कैसे मिलता है तो सब समय स्पष्ट नहीं हो सकता तो चर्चा बहुत चली चिद विलास पर से चिद विलास में प्रकरण लिखा है दीपचंद जी ने बहुत सूक्ष्म सिद्धांत ज्ञान था उनका बोले कि कुछ गुण में तो बैठता है इसलिए सब गुण में ले लेना चाहिए लेकिन सब में कह नहीं सकते ज्ञान में इतना स्पष्ट आता नहीं है अभी के क्या बोले कि हमारे ज्ञान में इतना स्पष्ट नहीं आता है क्या उस क्या समझावे सभी ज्ञानियों में सभी भेद प्रभेद का कोई स्पष्ट जानकारी हो जावे वो कोई संभव
नहीं
जब ज्ञानी की ये जब ज्ञानी की यह स्थिति है कि उनके ज्ञान में भी सभी भेद प्रभेद स्पष्टतया नहीं आता है फिर अज्ञानी उसके लिए सिर फोड़ करे तो क्या हाथ में आएगा और प्रयोजन कुछ भी नहीं है तो पहले तो कोई भी प्रश्न करो तो मेरा प्रयोजन इसमें है कि नहीं, ये पहला विचार करके भले थोड़ी देर लगे उतने क्या उतनी देर लगे उसमें कोई बात नहीं, लेकिन सीधा ही प्रश्न कर देना उसमें थोड़ा अपने नुकसान का कारण है। आत्महित तो बहुत धीरज का विषय है, फटाफट विचार में आवे और फेंक देवे ऐसी लाइन नहीं, बहुत शांति की धीरज की भीतर में सही बात है, ये बात खरी खरी बात। हमारे राजू भाई करके आते थे भावनगर से, सितंबर भाई हमें जो लोग अपने आते हैं ना सब, सितंबर भाई आए थे ना कोई पाँच छः, उसमें एक राजू भाई करके आते थे, अभी नहीं आ रहे हैं। उनका भी ऐसा आदत था, बहुत तर्क और बहुत प्रश्न करे, और जैसे ही उत्तर दिया नहीं दिया, क्योंकि एक दो सवार हो गया इनके सिर पर, क्या होता है कि सामने वाला उत्तर देते हैं उसका पूरा सुना नहीं सुने दो तीन तो प्रश्न खड़े हो जाते हैं, इसलिए उसके पूरे सुने नहीं सुने अपना प्रश्न तो फेंक देवे। तो पूज्य भैंसरी के पास एक दफे हो गए कि मुझे कुछ पूछना है, ठीक भैंसरी उसको स्पेशल टाइम दिया, बताया था कि श्वेतांबर है इस अपनी ओर आए हैं, थोड़ा आदमी वैरागी भी है, सब तो ऐसे निकल गया था ना घर से, तो अपने को तो सोनगढ़ रहना है ऐसा करके घर को छोड़ करके निकल गया था, डेढ़ महीना इधर रह गया था, तो उसको टाइम दिया, वैसे ही प्रश्न पूछने लगा। वैसे ने क्या बोला कि धीरे धीरे थोड़ा प्रश्न पूछने में इतना जल्दी मत जल्दबाजी मत करो, मुझे ये अनुकूल नहीं है। क्या बोले, मुझे अनुकूल नहीं है, शांति से पूछो मैं शांति से जवाब दूँ, फिर शांति से पूछो विचार करके ऐसे। नहीं, ये चर्चा की जो पद्धति है वो भी तत्व चर्चा के ये विषय है, तत्व तो विषय ही ऐसा है। भगादड़ी का विषय शांति और अजंपा दो विरुद्ध है, इसमें अजंपा थोड़ा है, जल्दबाजी में क्या है अजंपा होता है। मुंबई जोई लेव तमारे अजंपा नगरी, બધા જલ્દી જલ્દી કામ કરે છે એવું નથી, અજંપો બહુ છે ભગવાન, ચંચળતામાં આકુળતા બહુ છે, પાછા પોતાની નિંદા કરે એ જરૂરી છે, મોક્ષ ની ભૂમિકામાં એ એક સ્ટેજ આવે છે એને માટે અનુકૂળ છે।
આરાધનામાં
જ્ઞાની શા માટે ઉપયોગ મૂકે કોઈના પરિણામ ઉપર? જ્ઞાની તો અપના રસ્તે ચલતે હૈ ઓર રાસ્તા દિખાતે જાતે હૈ, દેખ મેં યે રસ્તે ચલતા હું, બસ જ્યાદા લગાવ નહીં કિસી સે. વેપારી યા ઘર આતે હૈ માલ લેને કો, બોલને મેં તો એસા બોલે કે તુમ્હારી સુવિધા કે લીએ મેને એસા અપના દુકાન બનાઈ હૈ, બાદ મેં કુછ માલ નહીં, અપની કમાઈ કે લીએ દુકાન હૈ, અપના કામ કરતા માર્ગ દિખાતે જાતે. પાત્રજી કી પાત્રતા દેખતે તો પ્રમોદ કરતે હૈ, ગુણેશું પ્રમોદ, બસ ઉતના બનતા સદમસ્ત અવસ્થા.